नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो स्तरीय सुधार का विरोध किया। वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के करीब। ईरान ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा तो खाड़ी और लाल सागर के रास्ते व्यापार बंद कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच भारत सुरक्षित और निर्बाध समुद्री पारगमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी, ईरान के साथ अमेरिका इसराइल का युद्ध अभूतपूर्व ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है। और तुर्की के कहरामन मरास में एक छात्र द्वारा स्कूल में गोलीबारी करने से 4 लोगों की मौत और 20 घायल। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की दो स्तरीय प्रणाली के निर्माण का कड़ा विरोध किया है, जबकि G4 समूह के उस समझौता प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो शक्तियों को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई है। सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ता में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि परिषद के किसी भी सार्थक सुधार के लिए वीटो शक्तियों के साथ स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने के लिए सुधारों में परिषद की संरचना और वीटो के मुद्दे दोनों को संबोधित किया जाना चाहिए। भारत का मानना है कि 80 वर्ष से अधिक समय पहले तैयार की गई संरचना वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। भारत ने G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान द्वारा प्रस्तुत एक समझौता प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने अफ्रीकी देशों के उस रुख का फिर से समर्थन किया जिसमें प्रावधान के बने रहने तक नए स्थायी सदस्यों की वीटो शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई है। भारतीय राजदूत ने कहा कि वीटो के प्रयोग को विनियमित करने के पिछले प्रयास प्रभावी नहीं रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर वीटो का प्रयोग लगातार होता रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है क्योंकि ईरान के अधिकारी शांति समझौते पर सहमत होने वाले हैं। आज एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने दावा किया कि यदि वे अभी अपनी सेना वापस बुला लेते हैं तो भी ईरान को देश के पुनर्निर्माण में 20 वर्ष लगेंगे। वहीं ईरान के सैन्य केंद्रीय कमान के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है तो वे ओमान की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री व्यापार को भी अवरुद्ध कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ईरान को हथियार न देने पर सहमत हो गया है। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि चीन ईरान को हथियार देने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीन इस बात से खुश है कि उसने होर्मुज जल डमरू मध्य को स्थायी रूप से खोल दिया है। उन्होंने कहा कि चीन अब ईरान को हथियार न भेजने पर सहमत हो गया है। इससे पहले श्री ट्रंप ने कल एक साक्षात्कार में कहा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने ईरान को हथियार भेजने से इनकार किया है। भारतीय एलपीजी पोत एमवी जग विक्रम आज गुजरात के कच्छ स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर पहुंच गया। इस पोत पर 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदा है। इस पोत का भारत आगमन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा के बाद ये होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला पहला भारतीय पोत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच भारत सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवागमन के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा बाजार में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों पर विचार विमर्श करने के लिए जापान द्वारा आयोजित एशिया शून्य उत्सर्जन समुदाय एजेक प्लस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात की। स्टॉकर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्टॉकर कल विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि श्री स्टॉकर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल की चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चांसलर स्टॉकर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री वोल्फगैंग हेटमैनडॉर्फर, वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में फ्रांस भारत संसदीय मैत्री समूह के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि चर्चा में भारत और फ्रांस की विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष IMF ने चेतावनी दी है कि अमरीका और इसराइल के बीच ईरान को लेकर चल रहा युद्ध ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भीषण मंदी आ सकती है। IMF ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक आउटलुक में कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने या ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचने से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यदि तेल की कीमतें लगभग 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं, तो वैश्विक विकास दर गिरकर 2.5% हो सकती है। IMF ने सरकारों को बड़े पैमाने पर अनियोजित खर्च करने के खिलाफ चेतावनी भी दी और कहा कि सहायता अस्थायी और लक्षित होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति अभी भी अधिक है और सार्वजनिक ऋण पहले से भी काफी ऊंचा है। रूस ने कल रात यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला शामिल था। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस की तरफ से रात में 324 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 309 ड्रोन को रोका, लेकिन मिसाइलों और 13 ड्रोन ने 9 स्थानों पर हमला किया। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ ने कहा है कि देश में ईरान में संवर्धित यूरेनियम की समस्या के समाधान में भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे इस समस्या का समाधान ईंधन योग्य यूरेनियम को पुनः संसाधित करके या फिर ईरान के अविभाज्य अधिकार का उल्लंघन किए बिना रूस में भंडारण के लिए एक निश्चित मात्रा को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं। तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत कहरा मनमरास में एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र द्वारा स्कूल में गोलीबारी करने से करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय गवर्नर ने पुष्टि की कि मृतकों में एक शिक्षक भी शामिल है। IPL क्रिकेट में बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 147 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्तरीय सुधार का विरोध किया। वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के करीब। ईरान ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा तो खाड़ी और लाल सागर के रास्ते व्यापार बंद कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच भारत सुरक्षित और निर्बाध समुद्री पारगमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी, ईरान के साथ अमेरिका इसराइल का युद्ध अभूतपूर्व ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है। और तुर्की के कहरा मनमरास में एक छात्र द्वारा स्कूल में गोलीबारी करने से 4 लोगों की मौत और 20 घायल। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।